मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 20 अगस्त 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत ही हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं दीपक, मीना, आपका गांव है बमन वास दूर सवाई माधोपुर राजस्थान, अंकित सैनी, आपका गांव है फतेहपुर और शहर है देहरादून उत्तराखंड, प्रणव राज, आप हैं गोड्डा झारखंड से, प्रणव शर्मा, आप हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से, दीपाली पांडे, आप हैं रावगंज कालपी जालौन उत्तर प्रदेश से, सुबला कुमारी, आपका गांव है पननखास कटिया बिहार से, और शक्तिधर सिंह, आपका गांव है बरलांगा जिला रामगढ़ झारखंड से। तो दीपक, अंकित, प्रणवराज, प्रणव शर्मा, दीपाली, सुबला और शक्तिधर, आप सभी 7 मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत उत्साह और उत्सुकता के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सोमवार है और सोमवार को हम लोग एग्जामिनेशन यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के बारे में बातें करते हैं। मुझे इस बात की सच पूछिए तो बहुत खुशी है, खुशी से भी ज्यादा बड़ी बात आत्मसंतोष है कि इस हिस्से को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और पसंद किया भी इसलिए जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, तथ्यों के बारे में बता देना, एनालिसिस कर देना, नो डाउट कि वो भी बहुत जरूरी है, वो एक अलग बात होती है। और एग्जामिनेशन के आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे, वो तो एक रास्ता बनाने जैसी बात होती है कि आपके लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है ताकि आप उस रास्ते पर सरपट तरीके से तेजी के साथ दौड़ सके। तो हम लोग इस तथ्य को लेकर के सोमवार को चलते हैं। आज भी मैं आपसे जो जनरल स्टडीज का 3rd पेपर होता है मेंस के बारे में बात करते हैं, उसके प्रश्नों की चर्चा करूंगा क्योंकि पिछले बार हालांकि जनरल स्टडीज के 3rd पेपर के प्रश्नों की ही चर्चा की जानी थी लेकिन जब कुछ चर्चा ऐसी होने लगी कि प्रश्न उसमें नहीं आ पाए, प्रश्नों को समझने की एक दूसरी जो शैली होती है उस पर ज्यादा बात हो गई, तो आज मैं कुछ प्रश्न लेकर के उन पर बातचीत करूंगा। तो प्रश्नों की समझ का ये 4th भाग होगा। लेकिन आइए थोड़ी सी हम न्यूज देख लेते हैं। न्यूज में सच पूछे तो कोई खास बातें नहीं है लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कि केरल कितना जबरदस्त रूप से बाढ़ से परेशान है, केरल। और केरल के बाढ़ को लेकर के लगभग सभी अखबारों में न केवल एडिटोरियल ही लिखे जा रहे हैं बल्कि संपादकीय भी लिखे जा रहे हैं। देखिए, जब मैं एडिटोरियल, लेख और संपादकीय कहता हूं तो उसमें थोड़ा सा फर्क क्या है। फर्क यह है फ्रेंड्स कि जो एडिटोरियल लेख होते हैं ये माना जाता है कि ये इंपॉर्टेंट घटना पर लेख लिखाए जाते हैं, लिखे जाते हैं। संपादकीय पृष्ठ वाले लेख कहना चाहिए तो वो कोई भी राइटर लिख सकता है। लेकिन जो संपादकीय होते हैं, जो एडिटोरियल कमेंट जिसे आप कहेंगे, संपादकीय टिप्पणी, वो उससे भी ज्यादा मायने रखते हैं। मायने इस रूप में रखते हैं कि ये माना जाता है कि ये जो पूरा का पूरा अखबार है, ये अखबार किसी एक पर्टिकुलर घटना के बारे में क्या विचार रखता है, तो एक संस्थागत विचार होता है। तो उसमें जो टॉपिक चुने जाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं और जो विचार व्यक्त किए जाते हैं वे भी तुलनात्मक रूप से इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि केरल की घटना को लेकर के, बाढ़ की स्थिति को लेकर के लेख भी लिखे जा रहे हैं और संपादकीय टिप्पणियां भी लिखी जा रही हैं। इसका मतलब है कि ये एक इंपॉर्टेंट घटना है, इवेंट है। जब आप इसे अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से जोड़ेंगे तो ये सीधे सीधे आपके आपदा प्रबंधन से जुड़ जाता है, प्राकृतिक जो विपदाएं आती हैं उससे जुड़ जाता है। यहां मैं आपको एक बात के प्रति थोड़ा सा सतर्क करना चाहूंगा या यूं कह लीजिए कि निर्देशित करना चाहूंगा, और वो ये कि इसमें एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, पहले भी मैं बता चुका हूं। तो जो हमारे यहां व्यवस्था की गई है आपदा प्रबंधन के लिए, वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से मालूम होना ही चाहिए। केरल के संदर्भ में आपको एक बात और भी ध्यान देनी है कि वहां जो इस तरह की बाढ़ आई है उसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, नो डाउट कि कम समय में अधिक बारिश अगर हो गई तो उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है आप उससे उसे जोड़ करके देख सकते हैं। लेकिन एक समय में अगर ज्यादा बारिश हो गई है तो बाढ़ जो आएगी, अगर कुछ स्थितियां बेहतर हुई होती तो बाढ़ इतना विनाशकारी नहीं होता। तो क्या कारण है कि वो बाढ़ आई? तो अखबारों के एडिटोरियल कमेंट में आप पाएंगे कि लोग ये बता रहे हैं कि किस तरीके से खनन रोकने की बात कही गई लेकिन खनन नहीं रोका गया, जंगल लगातार कटते चले गए, जो शहर हैं वो लगातार बढ़ते चले गए, बांध बनाए जाने लगे। तो इस तरह से प्रकृति के साथ बहुत जबरदस्त रूप से छेड़खानी की गई, और जब उस तरह की छेड़खानी की गई तो फिर प्रकृति अपने जो एक स्वाभाविक प्रवाह है, बट नेचुरल है कि उस स्वाभाविक प्रवाह से उसका भटकाव होगा और उसके नतीजे के तौर पर इस तरह की विनाशकारी बाढ़ हमें दिखाई दे रही है। तो भारत में जो बाढ़ के कारण है उस पर आपको तैयारी करनी चाहिए। और साथ ही साथ यहां एक और सवाल उठता है कि बड़े बांध हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, बनाए जाने चाहिए या नहीं बनाए जाने चाहिए, इस पर भी थोड़ी सी बात की जानी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको फ्राइडे को या सैटरडे को, शायद फ्राइडे को, आपको डॉक्टर भरत झुनझुनवाला का एक लेख प्रोवाइड किया था जिसमें उन्होंने बांधों पर ही कुछ सवाल उठाए थे कि किस तरह के बांध बनाए जाने चाहिए। तो जो बांध है वह भी आपके आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता हुआ नजर आ रहा है, जो आपके जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर का होगा। फ्रेंड्स, जो दूसरी खबर केरल से ही संबंधित है कि कल के न्यूज में आपने सुना होगा कि केरल में स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो रही है और अब उन्होंने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आप प्राकृतिक आपदा से ही संबंधित है। तो ये ऑरेंज अलर्ट क्या है? बेसिकली तीन तरह के अलर्ट जारी किए जाते हैं, तीन तरह के। इसमें जो सबसे सॉफ्ट होता है वो है येलो अलर्ट, यानी कि पीली सतर्कता आप कह लीजिए। पीली सतर्कता यह है कि यह पूर्व में आपको केवल सतर्क किया जा रहा है, जिसे आप कह सकते हैं बी अवेयर, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, मतलब बहुत ज्यादा खतरा आ नहीं गया है और बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति भी नहीं बन रही है, लेकिन हो सकता है कि खतरा आ जाए तो आप प्रिवेंटिव एक्शन लीजिए, मतलब बचाव के लिए कुछ उपाय आप कर लीजिए। तो येलो, ये सॉफ्ट चेतावनी है। इसके बाद होता है मित्रों ऑरेंज। ऑरेंज को आप क्या कहेंगे, संतरा, जो भी अब उसको कलर कहना चाहे, येलो और ऑरेंज में काफी समानता भी होती है। तो ऑरेंज अलर्ट के तहत होता यह है बी प्रिपेयर्ड। देखिए, बी अवेयर में सावधान रहिए, अवेयर ध्यान देखते रहिए, एक्शन पे नहीं आइए, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि उससे थोड़ा सा स्थिति जो है गंभीर हो चुकी है, तो बी प्रिपेयर्ड, यानी कि जो उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो इस तरह से तैयार रहें कि जैसे ही उन्हें चेतावनी दी जाए वो फटाफट वहां से मूव कर सके, वहां से जा सके, आप तैयार अपने आप को रखिए। इसके बाद है रेड अलर्ट। रेड अलर्ट तो फिर वो लाल बत्ती ही हो गई, सबसे ज्यादा खतरे का जो रंग होता है वो लाल होता है कि नहीं नहीं अब जो है ना आपको एक्शन लेना ही है, यानी कि टेक एक्शन, अब आपको एक्शन लेना है। और एक्शन क्या लेना है कि जो डेंजर जोन है, जो खतरनाक क्षेत्र जहां तक इसकी आशंका है इसके प्रभाव की, तो आप उससे बाहर चले जाइए, मूव कर जाइए अपने आप खुद को लेकर के, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के, क्योंकि इस अब नुकसान होने की आशंका है, नुकसान हो सकता है, रास्ते टूट सकते हैं, जानवर बह सकते हैं, बिजली जा सकती है, स्कूल वगैरह सब बंद करा दिए जाएंगे, तो इस तरह के प्रिकॉशंस लेने शुरू हो जाते हैं और पब्लिक को वहां से मूव कराया जाने लगता है। तो ये तीन तरह के अलर्ट हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। फ्रेंड्स, आइए अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं और वो है प्रश्नों की समझ। प्रश्नों की समझ के तहत देखिए, मैं खासकर थर्ड पेपर की आपको बात कर रहा हूं और उसमें जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े भ्रमात्मक होते हैं। भ्रमात्मक इस रूप में कि जब आप पिछले साल के अनसॉल्व पेपर पढ़ेंगे तो फिर आपको लगेगा कि यार हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चंस करंट कंटेंट से संबंधित होते हैं। पिछली बार मैंने आपको इस तरह की कुछ बातें बताई भी थी। जैसे उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न पूछा गया कि सार्वजनिक निजी भागीदार मॉडल के अधीन संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से भारत में विमान पत्तनों के विकास का परीक्षण कीजिए, एयरपोर्ट, राइट। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो एयरपोर्ट डेवलप हो रहे हैं उनका परीक्षण कीजिए और इसमें प्राधिकरण के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, ये प्रश्न आया। अब आप देखिए कि इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात तो की जा रही है लेकिन वो एयरपोर्ट के संदर्भ में बात की जा रही है। तो जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको लगेगा कि यार एयरपोर्ट के बारे में कहा है तो फिर हम और किन किन के बारे में करें, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो बहुत से क्षेत्रों में काम कर रहा है। लेकिन आपको यहां एक दिमाग में बहुत क्लियर धारणा रखनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल से थोड़ा सा और आगे जब ये एग्जामिनेशन हुआ है, उड़ान योजना की बात कही गई थी। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, छोटे छोटे शहरों को भी एयर से, एयर ट्रैफिक से जोड़ने की बात आई। तो अब आपको उन छोटी छोटी जगहों पर एयरपोर्ट तो बनाने पड़ेंगे ना, तो वो करंट से जुड़ी हुई घटना है। अब जरूरी नहीं है कि वो इस साल भी पूछा जाए, आगे साल, अगले साल भी पूछा जाए। हाँ, अगर कोई फिर से एयरपोर्ट को लेकर के कोई बड़ी बात हो गई, चर्चा का विषय हो गया, तो फिर वो जरूर पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से थर्ड पेपर में आप पाएंगे कि जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन का संबंध बिल्कुल करंट से होता है। इस बारे में आप कोई अपने दिमाग में डाउट मत रखिए, पहली बात। जो दूसरी बात है फ्रेंड्स, की थर्ड पेपर की एक विशेषता यह है कि अगर आप इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी बेसिक्स को समझते हैं और उसे करंट पर अप्लाई कर देते हैं तो क्वेश्चंस के आंसर निकालना आपके लिए अपेक्षाकृत आसान हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न बताऊं, 2017 का ही है, कि लागत प्रभावी छोटी प्रक्रमण इकाई की अल्प स्वीकारिता के क्या कारण हैं? व्हाट आर द रीजंस फॉर पुअर एक्सेप्टेंस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब हमारे यहां जो प्रोसेस करने वाली जो इकाइयां होती हैं, खासकर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, जैसे कि सॉस बनाने वाली कोई कारखाना खोल लिया जाए, पापड़ बनाने का कोई कारखाना खोल लिया जाए, इस तरह के छोटे छोटे कारखाने जो कृषि उत्पादों पर आधारित हैं, तो ये इसको ज्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर आगे देखिए इसी में क्या पूछ रहे हैं कि खाद्य प्रकरण इकाई गरीब किसानों की सामाजिक राजनीतिक स्थिति को ऊपर उठाने में किस तरह सहायक होगी। 150 शब्दों में उत्तर दे, केवल 150 शब्द हैं। और इस पूरे प्रश्न को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से इसके दो भाग दिखाई देंगे। देखिए, जहां भी ऐसे प्रश्न आए आप उसको तोड़ दीजिए, एक साथ अगर मिला करके आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके उत्तर का स्ट्रक्चर बदल जाएगा और आपके थॉट्स भी सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे। इसमें देखिए सीधे सीधे दो पार्ट दिया हुआ, पहला तो यह दिया हुआ कि क्या कारण है कि इसे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये बहुत ही व्यावहारिक चीज है कि एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं जो छोटी छोटी इकाइयां होती हैं जिनमें कम पूंजी लगती है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो क्या उनका जो सामान बनता है वो स्तरीय नहीं होता है, या फिर वो सामान जो बनाते हैं वो महंगा होता है? इस तरह का विश्लेषण आपको करना होगा। 3-4 पॉइंट दे दीजिए, 75 शब्द ही तो लिखने हैं इसमें, जिसमें और कम लिखना चाहें तो 50 लिख दीजिए, दूसरे वाले हिस्से में आप 100 शब्द लिख दीजिए, 150 शब्द तो कोई ज्यादा नहीं होते हैं। फिर है कि जो फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट्स आ रही हैं, उस यूनिट से कैसे किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति ऊपर उठ सकती है। अब देखिए कि हर साल आपको यह पढ़ने को मिलेगा कि आलू बर्बाद हो रहा है, टमाटर तो बर्बाद होते ही होते हैं, प्याज को खरीदने वाला कोई नहीं है, किसान फेंक फेंक करके जा रहे हैं। अब क्या करें, किया जाए इसका? हमारे पास उतने कोल्ड स्टोरेज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज है भी तो वहां उनको रखने का खर्चा बहुत अधिक है, तो फिर उपाय क्या है? कितना अच्छा उपाय हो सकता है कि वहां छोटी छोटी यूनिट लगा दिया जाए। जहां टमाटर खूब हो रहा है वहां टमाटर की 5-7 छोटी छोटी आप यूनिट लगा लीजिए सॉस बनाने की, तो वहां किसान अपना टमाटर को बेच देगा, वो उन फैक्ट्री को सस्ते में टमाटर मिल जाएगा, किसानों को थोड़े से टमाटर की अधिक कीमत मिल जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि इससे किसानों को सीधे सीधे फायदा हो जाएगा और वहां गांव के लोगों को सीधे सीधे वहां रोजगार भी मिल जाएगा लोकल लेवल पर? तो सिंपल सी बात है कि अगर आप जरा सा भी व्यावहारिक स्तर पर सोचेंगे तो बिना पढ़े ही आपको इसका उत्तर समझ में आ जाएगा। फिर आप अखबार पढ़ ही रहे हैं, अखबारों से भी जब आप लगातार संपर्क में रहेंगे तो वहां से भी आपको कुछ ना कुछ उत्तर के लिए बिंदु मिल जाएंगे, बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से मित्रों, जब आप थोड़ा सा धैर्य रखकर सोचना शुरू करेंगे तो आपको फिर महसूस होगा कि नहीं नहीं हम जितना बड़ा संकट समझ रहे हैं दरअसल संकट उतना बड़ा है नहीं। राइट फ्रेंड्स, तो न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, सागरिका मिश्रा जो अंगुल उड़ीसा से हैं, आकाश श्रीवास्तव दतिया मध्य प्रदेश से हैं, रेखा द्रविड़ फिरोजपुर पंजाब से हैं और गोलू गौर। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।